आपके चरण कमलों में अपने को पूर्णतया शरणागत करके मैं सुखी हो गया हूँ। अब मेरा भौतिक क्लेश दूर हो चुका है, अतः मैं समस्त व्याकुलताओं से मुक्त हूँ। चारों दिशाओं में जहाँ भी मैं देखता हूँ, मुझे प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। आपके यह दो चरण कमल शोक तथा भय से मुक्ति दिलाते हैं। ये दिव्य अमृत के कुंड हैं। मैंने उन चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है तथा भौतिक जीवन के समस्त भय को छोड़ दिया है। मैं एकमात्र आपकी सेवा में व्यस्त रहूंगा तथा बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। आपके चरण कमलों से अनुराग रखते हुए मैं आपको सुख देने का अपनी ओर से श्रेष्ठतम प्रयास करूंगा। आपकी सेवा संपादन करते हुए जो कुछ भी कठिनाइयां मुझे मिलेंगी, वो वास्तव में महान आनंद का कारण होंगी। आपकी सेवा में वचनबद्धता के दौरान जो भी सुख तथा दुख मिलता है, वह महान संपत्ति है। वास्तव में ऐसे सुख एवं दुख अज्ञान जनित क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। आपकी सेवा में आने वाले आनंद का अनुभव करने के पश्चात मैं अपना पूर्व इतिहास जीवन भूल गया हूँ। मैं आपका दास हूँ तथा आप मेरे स्वामी हैं। किसी दूसरी संपत्ति की लालसा रखने से क्या लाभ। आपकी सेवा में तत्पर रहते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आनंद रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। आपकी प्रसन्नता हेतु वे आपके परिवार में रह रहे हैं एवं सब प्रकार से आपकी सेवा में व्यस्त हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईशवावतम श्लोको न जिहासति यद्यसः हत्वा मैनारं हरेत् युद्धे सैत्नियतो मया। ईशवावतम श्लोको न जिहासति यद्यसः हत्वा मैनारं मैनां हरेत् युद्धे सैत्नियतो मया। ईशवावतम श्लोको न जिहासति यद्यसः हत्वा मैनां हरेत् युद्धे सैत्नियतो मया। शब्दार्थ कृपया पीछे पीछे बोलिएगा। एषः यः ब्रह्मचारी वा अथवा उत्तम श्लोकः भगवान विष्णु जिनकी पूजा वैदिक स्तुतियों से की जाती है ना नहीं जिहासति त्यागना चाहता है यद क्योंकि यसह यश हत्वा मारकर मां मुझको एनाम इस भूमि हरेत ले लेगा युद्धे युद्ध में सईद लेट जाएगा निहतः मारा जाकर मया मेरे द्वारा। तो अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वह अपने विस्तृत यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। अनुवाद मेरे पीछे जोड़ाइए प्लीज। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वह अपने विस्तृत यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। तात्पर्य बलि महाराज का यह कथन कि विष्णु मारा जाकर लेट जाएगा सीधा अर्थ नहीं है, क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। वे सबको मार सकते हैं किंतु स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतएव लेट जाने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। भगवान विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे मंदिर में जो वरिष्ठ वैष्णव है उनके लिए भक्ति वैभव का कोर्स हो रहा है। तो अभी उनका यूनिट 1 का OBA था, तो मैंने एक भक्त का उत्तर देखा, उसमें प्रश्न था कि श्रीमद् भागवतम को सुनने और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जो गुण बताए गए हैं भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में और पाँचवें से आठवें श्लोक में और दूसरे अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोकों में उसके ऊपर चर्चा करें। तो जब हम उस स्तर को देख रहे थे तो हमें बताया गया था कि आपको क्लास लेनी है, तो उसके उसमें जो क्वालिटीज़ प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर मेंशन कर रहे हैं तो वो देखकर तो हम घबरा रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है हमारे अंदर की, तो फिर कैसे चर्चा करेंगे। तो फिर एक विश्वास लेकिन ज़रूर है, वह भक्तों के आशीर्वाद पे। जब एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो पिताजी उसको उंगली देकर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसका उंगली छोड़ देते हैं, उस बच्चे को बोलते हैं चलो आगे खुद चलने का प्रयास करो। तो उस बच्चे को सिर्फ एक विश्वास होता है कि अगर मैं गिरूंगा तो मुझे पकड़ने के लिए कौन है, मेरे पिताजी हैं। तो मेरा बस ये विश्वास है कि यहाँ पे सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं जिनका उंगली पकड़ के हमने भक्ति में चलना शुरू किया है और आगे बढ़ेंगे, तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी गलतियों को वो सुधारेंगे और हमें सहारा देंगे आगे बढ़ने के लिए। और आप सब वैष्णव भक्तों और वैष्णवी माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके भागवतम के ऊपर इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट का जब अनुवाद हमने पढ़ा तो बड़ा विवादास्पद इसका अर्थ है। इसमें कहते हैं बलि महाराज, अभी तक बलि महाराज बहुत अच्छे तरीके से भगवान का गुणगान कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या कहते हैं कि यदि यह ब्राह्मण अगर वास्तव में विष्णु है तो या तो यह मेरे द्वारा मार दिया जाएगा, मार कर लेटा देंगे। कहते हैं ना कि वो बाहर लोग कहते हैं कि लेटा देंगे मार के कुछ तरीके से, तो कहते हैं कि या तो इसको लेटा दूंगा मैं या फिर ये मेरा वध कर देगा। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था समझने के लिए। एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर के आश्रम में हेजल ने श्रद्धानाथ स्वामी महाराज ने एक वरिष्ठ वैष्णव को बुलाया और उनको एक आदेश दिया। उनको कहा आई वॉन्ट यू टू डाई फॉर मी। तो भक्त बड़े विस्मित हो गए कि महाराज क्या कह रहे हैं। तो फिर महाराज ने उनको एक धोती दिया और उनको बोला आई वॉन्ट यू टू डाई इट सैफ्रन, इसको हम इसका डाई कर दो। तो जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य की अच्छाई चाहते हैं और शिष्य के साथ साथ सबका अच्छाई चाहते हैं, लेकिन कई बार जब एक शुद्ध भक्त भगवान का गुणगान करते हैं या चर्चा करते हैं तो वो बड़ा विवादास्पद हो जाता है, बिविल्डरमेंट हो जाता है। तो उस भक्त के द्वारा कहे कथन को समझने के लिए एक दूसरे शुद्ध भक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे बलि महाराज ये कथन कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही विशेष भक्त भगवान के, वह है हमारे परम पूजनीय श्रील प्रभुपाद नवयोगेंद्र स्वामी महाराज। कहते हैं अति कृपालु अति दयालु पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करने वाले हमारे श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने तात्पर्य में इस चीज़ को क्लियर किया है कि वास्तव में भगवान को जो बलि महाराज कह रहे हैं मार देंगे उसका क्या मतलब है। तो इसको श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं बहुत आवश्यक है हमारे लिए। कहते हैं कि ये उस बाउंड्री के समान है, उस फेंसिंग के समान है जो कि हमें बाहर जो हरा घास है उसको चढ़ने से रोकते हैं और हमें वास्तविक अर्थ समझाते हैं इस श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के श्लोकों का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलि महाराज का यह कथन कि विष्णु मारा जाकर लेट जाएगा इसका सीधा अर्थ नहीं है, क्योंकि विष्णु जो है वो किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे स्कंद दूसरे अध्याय में जब भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं तो उसमें आत्मा की कई सारी विशेष गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं अविनाशी तू तद विधि, ये जो सारे व्याप्त शरीर में व्याप्त जो आत्मा है ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। फिर कहते हैं आगे 19वें श्लोक के अंदर कि यनम वेत्ति हंतारम यश चैनम मन्यते हतम उभौ तौना विजानी तो नायम हंती न हन्यते, कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और या उसे मरा हुआ समझता है दोनों अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। न जायते मृयते वा कदाचित नायब भूतवा भविता वा न भूत, क्योंकि जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं, कभी उसका जीवन नहीं होता। तो ये जो आत्मा है वो आती कहाँ से है, वो आती है भगवान से। हम सब भगवान के क्या है, पार्ट एंड पार्सल है। भगवान जो है अल्टीमेट सोर्स है वही परमात्मा है। तो जब आत्मा को कोई नहीं मार सकता तो परमात्मा को कौन मार सकता है, और वो परमात्मा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को कभी मारा नहीं जा सकता। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो भगवान है उनको कोई नहीं मार सकता, हालांकि वो मार सकते हैं, वो मार सकते हैं लोगों को, लेकिन भगवान को नहीं मार सकते। अतएव लेट जाने का वास्तविक अर्थ ये है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। देखिए भगवान हम सबके हृदय में है वैसे, हम सब जानते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान हम सबके हृदय में है। भगवत गीता के अंदर कई श्लोकों में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मेरे से ही सारा ज्ञान सारा ये आता है। फिर और कई जगहों पर कहते हैं भगवान कि मैं आपके हृदय में स्थित हूँ। लेकिन यहाँ पे एक विशेष तात्पर्य ये कहने का है कि भगवान परमात्मा रूप में जरूर स्थित है हमारे हृदय के अंदर, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं अपने उस दिव्य रूप के अंदर हमारे हृदय के अंदर स्थित होकर हमें गाइड करते हैं हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के आखिरी सेंटेंस जो कि हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धक है, वो कहते हैं कि भगवान विष्णु सिर्फ भक्ति के द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा उन्हें कोई नहीं हरा सकता। श्रीमद् भागवतम के अंदर कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि भगवान किसी रूप में एक तरीके से हार जाते हैं। जैसे कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह जब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज मैं सारे पांडवों को मार दूंगा, और ऐसा भयंकर युद्ध किया उन्होंने कि भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। तो एक प्रकार से भगवान ने हार मान लिया अपने उस प्रतिज्ञा को लेके और स्वयं जो रथ का चक्र था उसको लेके भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। इसी प्रकार से एक और प्रसंग आता है दामोदर लीला का, कि किस प्रकार भगवान को माता यशोदा पकड़ पाने में बहुत असमर्थ थी, उनको समझ में नहीं आता कैसे पकड़ू। हालांकि कृष्ण बहुत छोटे थे और माता यशोदा बड़ी थी, लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर और उनके प्रयास से प्रसन्न होकर भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं माता यशोदा के प्रति। और भगवान के एक बहुत विशेष भक्त जो कि कह सकते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वो है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, जो डिवोशन है, वो तो इतना उत्कृष्ट है कि भगवान उसको समझ ही नहीं पाए। और उसको समझने के लिए अवतार लेते हैं भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड एक बहुत सुंदर पास्ट टाइम है जिससे कि हम भगवान के जो इनकंसीवेबल पास्ट टाइम्स हैं उसको थोड़ा, वैसे तो हमारे लिए अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि उसको समझ सके, लेकिन उस पर प्रकाश डालते हुए चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष लीला है। सन 2008 में जब हम लोग शुरुआत में आए थे यहाँ पे बेस से, तो मुरली कृष्ण प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु की वो अष्ट प्रहरीय जो महाप्रकाश लीला है उसके ऊपर चर्चा की थी। तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है मुकुंद का, कि इस अष्ट प्रहरीय लीला में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा दे रहे थे, चाहे कोई भी हो सबको कृपा दे रहे थे। तो इस मौके का फायदा उठाकर जो भक्त थे वो अपने सगे संबंधियों, अपने पत्नी, अपने बच्चों, सबके लिए चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांग रहे थे। लेकिन एक भक्त थे मुकुंद, जो कि पर्दे के पीछे दूर कोने में बैठे हुए थे। तो श्रीवास ठाकुर ने जब ये देखा तो उन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु, ये मुकुंद तो बहुत विशेष वैष्णव है, जब ये गाते हैं तो हमारा हृदय रवित हो जाता है, और ये आपके बहुत विशेष अनन्य पार्षद हैं, लेकिन आप इनके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या है, ऐसी क्या गलती की उन्होंने कि आप इनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा ऑफेंडर है, ये जब भक्तों के संग में रहता है तो भक्तों के समान हो जाता है, लेकिन बाहर जब जाता है मायावादियों के बीच तो उनके समान हो जाता है, इसलिए मैं इसको कृपा नहीं दूंगा। तो भक्त लोग बहुत विनम्र प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से और कहते हैं कि महाप्रभु, आप तो बहुत कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं, कृपया करके मुकुंद के ऊपर कृपा कीजिए, उनको दर्शन दीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ये इस लायक नहीं है कि उसको दर्शन दिया जा सके। फिर भक्त लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं महाप्रभु, आप बहुत दयालु हैं, कृपया करके उनको दर्शन दीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं मैं उसको दर्शन दूंगा, लेकिन 1 करोड़ 10 मिलियंस लाइफ टाइम्स के बाद। तो जब भक्त लोग ये संदेश मुकुंद को जाके देते हैं तो मुकुंद बहुत खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि अरे क्या, भगवान तो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? वो दुखी देखो दुखी, वो तो खाली पानी लेके आती है, उसको उन्होंने आशीर्वाद देके सुखी बना दिया। ये कोला बेचा श्रीधर जो कि केले का पत्ता बेचता है उसको सुखी बना दिया। मैं तो भगवान के लिए गाता हूँ, मैं तो भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, मुझ पर क्यों नहीं कृपा कर रहे? ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि अरे वाह, ये तो भगवान की असीम कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा है कि वो मुझे दर्शन देने के लिए तैयार हो गए हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना कि मुकुंद का ऐसा व्यवहार, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और वो उनको बुलाते हैं कि मुकुंद आ जाओ, और उनको गले लगा के उनको आशीर्वाद देते हैं कि मुकुंद, तुम जो है, मैं जब जब अवतरित होऊंगा, जहां जहां भी जाऊंगा, तुम जो है मेरे साथ हमेशा मेरे गायक सिंगर के रूप में मेरे साथ रहोगे। और ये बहुत ही शिक्षाप्रद घटना है। ये श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत के अंदर इसका बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, तो हम कुछ श्लोक जो इसके अंदर हैं उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, जो कि इसके अंदर आता है। तो ये चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 10वें अध्याय में ये श्लोक आता है, ये प्रकरण आता है। इसमें जो मुकुंद है वो कहते हैं, काफी बड़ा प्रसंग है, इसके अंदर कई श्लोकों के ऊपर जो है ये लीला का वर्णन है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए जो मुकुंद है वो कहते हैं इस प्रकार से, कीतहै न मालिनु मुनि है न भक्ति आर तो माँ देखी बारे अच्छा मोड़ा शक्ति। कि मैं जो है एक अत्यंत इनसिग्निफिकेंट, एक बहुत ही छोटा जीव हूँ, क्योंकि मैंने आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, तो मेरे अंदर क्या शक्ति है कि मैं आपको देख पाऊँ। जब मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाया तो मैं किस बल पे ये कह सकता हूँ कि मैं आपके दर्शन करूँ। और मुकुंद अपने दोनों हाथ खड़े करके रोने लगते हैं, और वो उतना उनका जो श्वास है इतना तेज हो गया कि उनका शरीर जो है वो कंपित होने लगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस मुकुंद के इस विलाप को देखते हुए, वो कहते हैं, मुकुंदे र भक्ति मोरा बड़ा प्रिया करी यथा गाओ तुमी तथा आमी अवतरी। मुकुंद, ये जो तुम्हारे भक्ति है ये मुझे इतना प्रसन्न कर रही है कि मैं स्वयं वहां जाऊंगा जहां तुम मेरा गुणगान करोगे, मेरा कीर्तन करोगे। महाप्रभु आगे कहते हैं, तुम्हें या तक ही ले सकल सत्य हय भक्ति बिना आमी देखिला ओ किछु नया। वट एवर यू सेड, आपने जो भी कहा है ये सत्य है, क्योंकि कोई भी बिना भक्ति के जो है वो मुझे देख नहीं सकता, वो मुझे साक्षात दर्शन नहीं कर सकता। हम देखते हैं कई ऐसे प्रसंग आते हैं भगवान की लीलाओं के अंदर कि भगवान स्वयं प्रस्तुत थे वहां पे, लेकिन सब लोग उनको नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान कौन है। स्वयं कृष्ण है जो कि पूरे इस अखिल जगत के सम्राट हैं। जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान के साथ होते हैं, लेकिन अर्जुन सब पहचान पाते हैं कि भगवान जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि भगवान के अभिन्न पार्श अभिन्न भक्त हैं। लेकिन वही दुर्योधन जो है वो भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते। तो महाप्रभु आगे कहते हैं कि यही तोड़ा सत्य कहो बड़ प्रिया तो अमी वेद मुखे बलि आछी यत किछु आमी। यही कर्म कैले है यही दिव्य गति तहां गुछाई ते पारे कहां रह सकती। कि तुम जो हो वो मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं क्योंकि और किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है कि जो वेदों के जो वाक्य है उसको बदल सके, जो वेदों में जो कहा गया है। लेकिन मेरा जो ये अथॉरिटी है वो बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे नियम और शर्तें हैं उससे ऊपर है, सिर्फ मैं ही उसको बदल सकता हूं, मेरे अलावा उसको और कोई नहीं बदल सकता। और भगवान ने महाप्रभु कह रहे हैं, और मैंने ही क्योंकि स्थापित किया है कि भक्ति के बिना कोई भी कार्य है वो सफल नहीं मानी जाएगी। जब तक वो भक्ति नहीं होगी, तो आप चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य कर ले, उसके अंदर भक्ति नहीं है तो वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंतर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छेति तद हम भक्ति उपृहतम अस्नानी प्रयतात्मन। कि अगर तुम चाहे मुझे एक छोटा पत्ता या पानी या चाहे एक फल भी ऑफर करोगे, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन उसके पीछे एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, वो क्या है? भक्ति। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान को हमारी किसी ऑफरिंग की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान इस अखिल जगत के सम्राट हैं। इसलिए इसके अंदर बिहारी प्रभु एक बड़ा अच्छा शेयर कर रहे थे, रिसेंट इंसिडेंट हुआ था 26 जनवरी को, जो है वो यूएई के जो प्रिंस थे वो आए थे भारत के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में। तो जब वो आए थे तो उनके साथ 500 टन सामान आया था जहाज के अंदर, हवाई जहाज के अंदर। हम जब 1-2 किलो हमारा वेट बढ़ जाता है तो हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो आ जाते 500 टन सामान आया था उनके साथ, 1500 लोग आए थे, 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां आई थी और कई सारी चीजें आई थी। तो जब एक इस छोटे से पृथ्वी ग्रह के एक छोटे से देश के एक छोटे से राजा का इतना बड़ा ऑपुलेंस हो सकता है, जो कि हर कोई नहीं समझ सकता उस ऑपुलेंस को, उसका जो ऑपुलेंस है उसका स्तर शायद हम नहीं समझ सकते, तो भगवान का जो ऑपुलेंस है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसको भी हम नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए क्या चाहिए? भक्ति। और तो चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस लीला के अंदर, और कहते हैं आगे कि महाप्रभु एक पास्ट टाइम रिलेट करते हैं कृष्ण लीला से, कहते हैं कि जब मैं जा रहा था वहां पे तो जो धोबी था जो कि राजा कंस के कपड़ों को धोता था, तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे कपड़े दे दो, लेकिन क्योंकि उसकी उसके अंदर भक्ति नहीं थी तो उसने क्या किया, मुझे नहीं दिया। और हम सब जानते हैं उसका आगे क्या हुआ, भगवान ने बस एक थप्पड़ मारा और उसको खत्म कर दिया। फिर महाप्रभु आगे कहते हैं इसी में कि भक्ति के बिना जो है मुझे समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चाहे मैं सामने भी होऊंगा, हो सकता है राधिका रमन जी हमारे सामने भी हैं होंगे, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भगवान को नहीं समझ सकते। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक लेक्चर के अंदर कह रहे थे कि इवन योर स्पिरिचुअल मास्टर स्टैंड्स विथ यू, हो सकता है आप अपने गुरु के बगल में खड़े हो, लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है भक्ति के अंगों का पालन करने के लिए, तो आपका जो मन है वो काम क्रोध लोभ मोह इन सब के चक्रों में ही फंसा रहेगा। तो इसलिए भक्ति को समझना बहुत आवश्यक है, भक्ति के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति का जो ये अंग है बहुत ही विशेष है। और हम सब इस संस्था के अंदर जो है, जो कि स्वयं भगवान के द्वारा प्रचारित किया गया है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे ग्रंथ दिए हैं, ये सारे शास्त्र दिए हैं, उसको लिखा किसने है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो कि एक बार फिर भगवान के ही अवतार है। और इस शास्त्र को, इस ज्ञान को समझने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया हमें, वो किसने दिया, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। और वो कौन है, वो स्वयं भगवान है। तो ये बहुत ही विशेष हमारे ऊपर कृपा है कि हम इस संस्था के अंदर हैं और भक्ति के नियमों को समझने का हमें मौका मिला है श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा के द्वारा। तो इस कृपा को हमें समझना है और इस कृपा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको ये मौका मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, भक्ति लता पाए गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति के लता का जो बीज है बहुत ही मुश्किल से मिलता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो भगवान की भक्ति तो हमें करनी है और भगवान को समझने का प्रयास भी करना है, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं कई बार इतनी इनकंसीवेबल होती हैं कि उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे अंदर। और भगवान की ये भी जो लीला है वो इनकंसीवेबल थी सबके समझने के लिए। वहाँ पे कई सारे लोग थे जो कि नहीं समझ पाए भगवान की इस लीला को। स्वयं शुक्राचार्य जो कि एक महान पंडित थे, एक महान ब्राह्मण थे, वो भी नहीं समझ पाए। लेकिन बलि महाराज जो कि हालांकि वो भी एक दैत्य परिवार से थे, एक दैत्य कुल से थे, लेकिन उनको एक बहुत विशेष कृपा प्राप्त थी। और वो क्या कृपा प्राप्त थी कि वो जो है वो किनके पर पौत्र थे, प्रहलाद महाराज। देखिए भगवान चाहते तो बलि महाराज को एकदम से मार के और इंद्र को पुनः व्यवस्थापित कर सकते थे राज्य के अंदर, लेकिन भगवान को ये बहुत ही विशेष लीला रचना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रहलाद महाराज को जो है एक प्रॉमिस दिया था। वो क्या प्रॉमिस दिया था, हाँ, कि मैं आपके आने वाले कई जो पीढ़ियां हैं उनका रक्षा करूंगा, उनका उद्धार करूंगा। तो बलि महाराज के लिए जो भगवान ने विशेष लीला की उसका एक बहुत प्रमुख कारण है, क्यों, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के डायनेस्टी में आए थे। और बलि महाराज स्वयं भी इस दूसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक के अंदर भगवान को सब कुछ देने का प्रयास करते हैं, हालांकि उनके गुरु उनको कहते हैं कि नहीं, ये जो है वे विष्णु है, ये छलिया है, ये तुम्हारा सब कुछ हरण करने के लिए आए हैं, लेकिन कहते हैं कि चाहे जो भी हो, क्योंकि ये मुझे मांगने आए हैं तो इसलिए मैं इनको अपना सब कुछ दे दूंगा। क्योंकि भगवान जो है बहुत ही महान है। देखिए इस पृथ्वी के अंदर भी कई बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट, बहुत सारे, अशोका द ग्रेट, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन सबका ग्रेटनेस जो है वो समाप्त हो गया थोड़े समय के बाद। सन 2009 में 11 मई को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक लेक्चर दिया था भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें श्लोक, इस अध्याय के पहले श्लोक पे। उसमें महाराज एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हो सकता है इस पंजाबी बाग के अंदर एक बहुत बड़ी कोठे के अंदर एक बहुत नौजवान व्यक्ति हो जो बहुत सुंदर हो, उसके बच्चे बहुत सुंदर हैं, सब कुछ है उसके पास, लेकिन ये सब कुछ कितने समय रहेगा, 10, 20, 50, 60, 70 साल, उसके बाद जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि ये लोग महान है, ये राजा महान है, तो भगवान को हंसी आती होगी कि सब ग्रेट तो है लेकिन कितने दिनों तक ग्रेट रहेंगे। मृत्यु सर्वस्य हरस चाहम, मृत्यु के साथ साथ ये सब कुछ जो है वो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन भगवान का जो ग्रेटनेस है, भगवान की जो महानता है, वो एवर एग्जिस्टिंग है। भगवान शुरू से अंत तक, इस सृष्टि की शुरुआत से इस सृष्टि के अंत तक जो उनका पोजीशन है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए भगवान को इस श्लोक के अंदर बलि महाराज भी कह रहे हैं कि इनका जो गुणगान है वो उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है, बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा किया जाता है। तो कई बार जब हम लोग भक्तों को कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में आइए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि अर्जुन तुम बोल दो, तुम डिक्लेयर कर दो, कौन ते अप्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रनश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो भगवान ये कह रहे हैं, अपने भक्तों के द्वारा भी कहला रहे, लेकिन कई बार हमारे हृदय के अंदर ये डाउट रहता है, क्योंकि भक्ति में जुड़ने से पहले कई हम सब लोग किसी देवी देवता की पूजा करते थे, या हो सकता है किसी गुरु के भी शरण में होंगे, तो लगता है कि अगर हम कृष्ण को शरणागत हो जाएंगे तो कहीं वो जो देवी देवता है वो दुखी तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो जो गुरु है उनका श्राप तो नहीं मिल जाएगा मेरे अंदर। और खासकर जब एक लीला भी आती है इंद्र की, जब जो सारे ब्रजवासी हैं जो गोवर्धन की पूजा करते हैं इंद्र की पूजा करने के बजाय, तो इंद्र कितने गुस्सा हो जाते हैं और किस प्रकार से ब्रजवासियों के ऊपर जो है वो इतनी प्रताड़ना करते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखो उस समय तो कृष्ण थे, उन्होंने बचा लिया, लेकिन आज कौन बचाएगा हमें अगर ये जो देवी देवता हैं वो। तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग रहता है, लेकिन नहीं, भगवान जब कह रहे हैं तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देखिए भक्ति श्रद्धा पे आधारित है, और वो श्रद्धा क्या है, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले कर्म सर्वकृत होए, कि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही हमारे सारे कर्मों का फल जो है वो लाभान्वित हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई उपाय नहीं है। इस सृष्टि के अंदर हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे बड़ा से बड़ा काम कर लें, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं है, अगर वो डिवोशनल सर्विस नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रसंग को हमें इस प्रकार से समझना है, और अंततः ये जो लीला है उससे हमें यही समझने का प्रयास करना है कि हम सबको भगवान को समर्पित करना है, और थोड़ा बहुत नहीं, सब कुछ। देखिए ये सब कुछ भगवान का ही है, कुछ भी हमारा नहीं है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इसके शुक्र के श्लोची एक बार प्रवचन में कह रहे थे कि रोते हुए आते हैं सब और रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए नहीं जाते, कौन हंसता हुआ जाता है, लेकिन रोते हुए आते हैं और हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। तो कृष्ण भक्ति है जो कि हंसते हुए जा सकते हैं, और कोई नहीं हंसता हुआ जा सकता है। तो प्रश्न आता है कि भक्ति तो हमें करनी है, लेकिन भक्ति कैसे करनी है। कई बार हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो दृढ़ता है वो किसी न किसी प्रकार से कम हो जाती है, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं। तो दो छोटे छोटे स्टोरीज हैं इसके पीछे, जिसको कि बता के हम ये चर्चा समाप्त करेंगे। ये कहानी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई पुस्तक है द मैचलेस गिफ्ट, उसके अंदर आती है। सन 2009 में यहाँ पे भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज आए थे, तो उन्होंने एक यूथ क्लास लिया था, उसके अंदर महाराज ने ये स्टोरी बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि किस प्रकार से एक छोटी चिड़िया होती है, उस वो अंडे जब देती है तो समुद्र के जो लहरें आते हैं उसके अंडे को समुद्र के अंदर बहा के लेके जाते हैं। तो जो छोटी चिड़िया थी वो उनसे प्रार्थना करती है समुद्र से कि जो है तुम प्लीज़ मेरे अंडे दे दीजिए, मैं बहुत निकृष्ट छोटी जीव हूँ, लेकिन ये मेरे बच्चे होने वाले हैं, इनको ये अंडे वापस कर दीजिए। तो समुद्र जो है सुनते ही नहीं है उनकी प्रार्थना को, क्या ये छोटी सी है। जैसे कई बार होता है जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, कोई नया भक्त हमें कुछ कहता है तो लगती है ये तो आज का छोड़ा है, ये अभी गिने गिने कुछ दिन हुए इसको भक्ति में आई है, हमें आदेश दे रहा है कुछ करने के लिए। तो वो जो चिड़िया थी उसकी बात को जो समुद्र है वो सोचते थे, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो चिड़िया उसको इतना दृढ़, वो इतनी डिटर्मिंड थी, उसने बोला कि देखो समुद्र, अगर तुम मेरे अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। तो समुद्र जो है वो हंसने लगे कि ये क्या कह रही है छोटी सी चिड़िया, क्या औकात इसकी कि मुझे सुखाने चली। लेकिन वो चिड़िया कहते नहीं, तुम मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। और वो प्रयास करने लगती है, अपने छोटे से बीक के अंदर एक एक दाना पानी का वो बाहर निकाल के लाती है। तो ऐसे संभव नहीं है उस छोटी सी चिड़िया के लिए कि समुद्र को सुखा पाए। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर हम बहुत छोटे हैं, हमारे लिए संभव नहीं है कि हम भक्ति को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, क्योंकि माया का इतना प्रभाव है, इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस है। लेकिन उस चिड़िया के दृढ़ प्रतिज्ञा से और उसके विश्वास के कारण और उसके उस प्रयास के कारण उसने कृपा आकर्षित की, किसकी, गरुड़ देव की। और गरुड़ देव आते हैं और वो कहते हैं समुद्र को कि समुद्र तुम इसके अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। और जब वो कहते हैं तो समुद्र को आना ही पड़ता है, क्योंकि वो भगवान के अनन्य पार्षद है और वो वाकई में सब कुछ कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि हम भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर पाए, लेकिन अगर भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, अगर भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, तो ही शायद हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, भगवान के इस भक्ति का पालन कर पाएंगे। और इसी प्रसंग में, इसी बलि महाराज के प्रसंग में एक कथा आती है कि कैसे जब बलि महाराज का ये यज्ञ समाप्त हो जाता है और वो सब कुछ दे देते हैं भगवान को, तो भगवान उन्हें अल्टीमेटली रिवार्ड करते हुए, हालांकि बलि महाराज ये यज्ञ कर रहे थे पूरे सृष्टि का सम्राट बनने के लिए, तो शायद वो नहीं मिला उनको, लेकिन भगवान ने उससे बड़ी उनको चीज दे दी, एक पूरा लोक दे दिया, सूतल लोक, जिसका कि जो योग, जिसका जो ऐश्वर्य है वो स्वर्ग लोकों से भी ज्यादा है। उनको बोला कि तुम इसके राजा हो, अधिपति हो, और कितने दिनों तक, कोई 10-20-50 साल तक नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन तक वो यज्ञ करके हो सकता है कुछ सालों तक पूरे स्वर्ग के राजा बन पाते, लेकिन भगवान की कृपा से उनको इतना बड़ा आधिपत्य साम्राज्य मिला। और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ भगवान उनके भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए, उनके समर्पण से इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान स्वयं एक द्वारपाल के रूप में, उनके गेटकीपर के रूप में वहां पे आ गए। तो बलि महाराज जब राज्य कर रहे थे, तो कई दिनों तक राज्य करने के उपरांत बलि महाराज का एक हैबिट था, वो हर दिन दान में देते थे लोगों को, जो लोग भी उनके पास कुछ मांगने के लिए आते थे अपने सूतल लोक में। तो कई दिनों से एक बहुत ही बूढ़ी महिला आती थी दान लेने के लिए, लेकिन वो लाइन के पीछे ही रह जाती थी, समय समाप्त हो जाता था। तो एक दिन बलि महाराज ने उनको बुलाया कि अरे आप कई दिनों से आ रहे हो, आपको हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं, आप मांगिए, जो मांगना चाहते हैं हम आपको दे देंगे। तो वो जो बूढ़ी महिला थी उनसे कहती है कि आप पक्का मुझे दे देंगे जो मैं मांगूंगी? तो कहते कि हाँ बिल्कुल दे दूंगा। और वहीं पे खड़े थे भगवान, तो भगवान समझ जाते हैं, भगवान जानते हैं कि वो कौन थी बूढ़ी महिला, वो स्वयं लक्ष्मी देवी थी। तो वो जानते थे कि ये तो मुझे मांग लेंगी, और बलि महाराज क्योंकि इतने दानवीर हैं, इतने दानशील हैं कि ये मुझे दे देंगे। तो उनके बोलने से पहले उनकी रक्षा करते हुए भगवान जो है वो स्वयं कहते हैं कि देखो मैं तो चला जाऊंगा इनके साथ वैकुंठ लोक में, लेकिन मेरा एक स्वरूप वामन के रूप में सदा तुम्हारे इस लोक के ऊपर द्वारपाल के रूप में स्थापित रहेगा। तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है, भगवान की कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और भगवान की कृपा से ही हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सब बहुत विशेष हैं। देवकी नंदन दास ठाकुर जी एक भजन में लिखते हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। आप सबके अंदर वो शक्ति है कि आप पूरे पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं, तो कभी अपने आप को कम मत समझिए। ये हम सब जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियों को, तो उसी प्रकार से हम सब शायद भूल चुके हैं, लेकिन ये जो संस्था जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित की है, या श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो मूवमेंट दिया है हरे कृष्णा मूवमेंट, ये उसी भूले हुए, उसी सुसुप्त अवस्था हमारे हृदय के अंदर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस हरे कृष्णा महामंत्रा इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डॉर्मेंट विद इन एवरीबडीज हार्ट, हर किसी के हृदय के अंदर सुसुप्त अवस्था में है। तो ये जो भक्ति का माध्यम श्री प्रभुपाद जी ने दिया है, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हमें दिया है, वो हमारे उसी सुसुप्त अवस्था से हमें जागृत करने के लिए है। उत्तिष्ठ जागृत बहत स्वभाव, उठिए जागिए और भक्ति करिए, और अपने जीवन को सार्थक बनाइए और लोगों के जीवन को भी सार्थक बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10 मिनट है, आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो कर सकते हैं, अन्यथा एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष गुणों का वर्णन करते हैं श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य। बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत ही सुंदर गुणगान करते हैं, क्योंकि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, देखिए भगवान कृष्ण को शायद हम प्रसन्न नहीं कर सकते अपनी भक्ति के द्वारा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो द्वारा दिया गया ये जो प्रोसेस है, अगर वो प्रसन्न हो गए तो भगवान, वो स्वयं भगवान है, अगर वो प्रसन्न हो गए तो हमारी भक्ति का जो है वो सफलता प्राप्त हो जाएगी हमें। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम वो भजन करें।
हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपके बहुत मधुर और सही तरीके से भागवतम का जो संदेश निरूपण किया है बहुत अच्छे हैं, सराहनीय हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बलि महाराज 12 महाजनों में एक हैं, तो जो महाजन है वो भगवान के सारे तत्व को समझते हैं तभी वो महाजन है। तो ये जो आज के श्लोक ऐसा जो मन में कैसे है, ये महाजन बनने से पहले आया कि बाद में है? क्योंकि महाजन के हृदय में ऐसे सवाल तो हो ही नहीं सकता कि को मार दूंगा भगवान को। तो महाजन बनने के बाद आया कि पहले आया क्या?
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस प्रश्न के लिए। तो इसका ये तो हमें नहीं पता कि वो महाजन बनने के पहले कहा उन्होंने या बात कहा, शायद हमारे गुरुवर्ग में बैठे यहाँ पे वरिष्ठ वैष्णव उसका उत्तर नहीं पाएंगे। लेकिन हम जो ये समझ पाए कि जो बलि महाराज हैं वो आत्मनिवेदन के आचार्य बने, उन्होंने ये जो स्थापित किया कि हो सकता है उनके गुरुदेव जिन्होंने उनको बचाया, जिनकी कृपा से ही वो थे उस स्थिति में थे, वो यज्ञ कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस लीला के अंदर, इस पाश्चर्य के अंदर ये जरूर दिखाने का प्रयास किया कि अगर भगवान या भगवान के भक्त या ब्राह्मण कुछ मांगते हैं तो हमें देने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो एक बहुत ही विशेष संदेश दे रहे हैं वो इस माध्यम से कि भगवान अगर कुछ मांगते हैं या भगवान के भक्त कुछ मांगते हैं तो हमें देने में कभी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। तो जो महाजन होते हैं उनका कर्तव्य है, और वो है वो ये स्थापित करने के लिए, भक्ति के प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करने के लिए। तो बलि महाराज क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही विशेष प्रिंसिपल जो सिद्धांत है उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो महाजन है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन्होंने ये वाक्य महाजन बनने से पहले कहा या बाद में कहा, इसका हमें जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और किसी का कोई टिप्पणी, कोई सम कमेंट्स, सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स? ठीक है, तो अभी 5-7 मिनट है। यस यस, दूसरा पास टाइम इस प्रकार से था कि हो सकता है हम भक्ति के अंदर कई ऐसी स्थितियां आएंगी जब हमें कहा जाएगा कि आप सब कुछ जो है वो न्यौछावर कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। जैसे जब एक भक्त ब्रह्मचारी आश्रम में आता है तो एक प्रकार से उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली ये छोड़ना छोड़ना नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि बाहर की जो भौतिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति में आने के बाद तो हमें बहुत कुछ मिलता है जो कि शायद बाहर में नहीं मिलता, लेकिन इस है कि भगवान जो है रक्षा करते हैं हमारी हर स्थिति के अंदर। तो बलि महाराज के इस प्रसंग में भी देखते हैं कि भगवान ने जो उनको कहा था कि हम रहेंगे आपके द्वारपाल के रूप में, तो भगवान रहे अपने एक दूसरे रूप के अंदर। तो जो भगवान कहते हैं, जो वो बोलते हैं, उसका वो हमेशा पालन करते हैं। तो भक्ति के अंदर बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे दृढ़ता के साथ, तो उसमें जो भगवान आने वाली अड़चने हैं उसको दूर करेंगे।
यही आप बता रहे थे ना कि बलि महाराज ने गेव एवरीथिंग टू कृष्णा, तो कृष्णा गेव हिमसेल्फ टू बलि महाराज।
यस,
सो हिज रेसिप्रोकेशन।
यस, भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान तो करते हैं। तो सच्ची सुचाष्टिकम श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इसका बहुत सुंदर अनुवाद है, आप लोग पढ़ सकते हैं, सीट के अंदर है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि उनके देह का रंग कुमकुम मिश्रित तेज माखन की कांति के समान है। वह 9 पुष्पों के बाणों से प्रहार करने वाले सुंदर कामदेव हैं। वो सदैव भक्ति रस के नए नए भावों का प्रदर्शन करते हैं। भाव भंगिमाओं के साथ नृत्य उन्हें भाता है। वे हर समय नए नए मजाक करते हैं जिससे सभी हंसते हैं। उनका रंग पिघले सोने के समान है। मैं सच्ची माता के पुत्र श्री गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से 8 ये वर्सेज हैं इसके अंदर, जिनका मीनिंग आप पढ़ सकते हैं।
नवकौरवरं नव पुष्पसरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवगौरवरं नवपुष्पसरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमावरं प्रणमामि सचिवं Sut Gaura Varam Navahasya Varam Navahema Varam Pranamame Sati Sut Gaura Navapremayutam Navanita Sucham Navavesakritam Nava prema rasam Nava prema yotam Nava vesakritam Nava prema rasam Nava dhagila sata Subha prema mayam Pranamami sati Sutta Gauravaram Navadhavilasata Subha Premamayam Pranamami Sati Sutta Gauravaram Hari Bhakti Param Hari Namadharam Karajapyakaram Hari Namaparam Satatam pranaya shrudharam pranamami sati sutta gauraram Satatam pranaya shrudharam pranamami sati sutta gauraram Satatam janata bhavata paharam Paramartha Parayana Loka Gatim Satatam Janata Bhavata Paharam Paramartha Parayana Loka Gatim Navalehakaram Jagatata Paharam Pranamami Sachi Sutta Gauravaram Pavale Karam Jagatata Paharam Pranamami Sati Nija Bhakti Karam Priya Charutaram Nata Nartana Nagara Raja Karam Kulakamini manasala sakaram pranamami sachi sutta gauravaram Kartalabalam kalakantharacham Ridu Banasuniki Yamaduram Kartala Balam Kalakantaracham Ridu Banasuniki Nija Bhakti Guna Vritanatyakaram Pranamami Sati Sutta Gauravaram Dharma Yutam Punarananda Sutam Dharani Suchitram Bhava Bhava Chitam Tanu Dhyana Chitam Tanu Dhyana Chitam नामे सचे सुत गौरवारम अरुणम नयनम चरणम वसनम वदने स्खलितम रचक नामधरम सुरसं जगता जीवनम प्रणमामि सचेत गौरवरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे कोई गलती रही तो कृपया करके माफ कीजिएगा गंधरा श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री चैतन्य महाप्रभु की नितई गौर प्रेमानंदे।